नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र की आज आठवीं बैठक है। सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज 6 नए विधेयकों को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। इसके अलावा सदन में 3 अहम दस्तावेज भी रखे जाएंगे, जिसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 91वां वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सोलन स्थित नौनी विश्वविद्यालय के 2021-22 और 22-23 के ऑडिट व निरीक्षण प्रतिवेदन, जबकि आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 शामिल है। वहीं सदन में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा में आएंगे, जिनमें विधायक सुल्तानपुरी गत दिनों परवाणु व नजदीकी गांव में हुए वर्षा से नुकसान और विधायक विक्रम सिंह ठाकुर कमरू में खनन के दौरान 3 मजदूरों के दबने की घटना पर सरकार का ध्यान खींचेंगे। इसके अलावा सदन में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी 2 स्टाम्प विधेयक संशोधन वापिस लेने का प्रस्ताव भी रखेंगे। सदन में नियम 130 के तहत कल से शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी, जिसमें पक्ष व विपक्ष के विधायक हिस्सा लेंगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
प्रदेश भाजपा विधायक दल की एक अहम बैठक कल देर सांय शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने भी बैठक में मुख्य रूप से हिस्सा लिया। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने सत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विधायक दल के साथ विस्तृत चर्चा की और सदन में पार्टी की भूमिका, संगठन व विधायक दल के बीच बेहतर समन्वय और जनहित से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से उठाने पर विचार साझा किए। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच है और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वे प्रदेश की जनता से जुड़े हर महत्वपूर्ण विषयों को पूरी मजबूती और तथ्यों के साथ सदन में रखें। बैठक में अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने इस साल जनवरी में प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एनआईए ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि ये गिरफ्तारियां आतंकी हमले के पीछे की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने, इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान करने और घटना से जुड़े व्यापक नेटवर्क और संबंधों का पता लगाने के लिए चल रही जांच का हिस्सा है। आरोपियों की सटीक भूमिकाओं का पता लगाने, उनके बीच के संबंधों को स्थापित करने और हमले के पीछे के आपराधिक नेटवर्क की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए एनआईए की जांच जारी है। नेपाल में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा के बाद लाहौल स्पीति प्रशासन ने भी एहतियातन तौर पर अब 4070 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घेपन ग्लेशियर झील की निगरानी और आपदा तैयारियों को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। उपायुक्त किरण भडाना ने बताया कि झील के जलस्तर और अन्य महत्वपूर्ण मानकों की लगातार निगरानी के लिए इस माह में सी डेक के सहयोग से अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली का सफल प्रशिक्षण सिसु झील पर हो चुका है और आवश्यक आंकड़े भी प्राप्त किए हैं। उपायुक्त ने बताया कि घेपन झील का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की 5 सदस्यीय टीम आज से अलग 14 दिनों तक क्षेत्र में अध्ययन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड हमले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि क्या एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे सख्त नियमों के दायरे में लाया जाना चाहिए। ये निर्देश 2013 में जारी दिशा निर्देशों के बावजूद एसिड की आसान उपलब्धता को लेकर बनी चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के लिए उचित पुनर्वास उपाय तैयार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करने पर विचार करने को कहा है। साथ ही न्यायालय ने कहा है कि पुनर्वास उपायों में एसिड हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजा, चिकित्सा सहायता और उच्च शिक्षा तक मुफ्त शिक्षा शामिल होनी चाहिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03। नमस्कार।